कमरे में झूलता बल्ब धीमे धीमे कांप रहा था। अनन्या मोबाइल हाथ में पकड़े चुप बैठी थी, नाखून दांतों से चबाते हुए उसे खुद से घिन आ रही थी। फोन डायल किया, वही नंबर, वही लड़का जिससे वो डरती थी। हेलो, उधर से आवाज आई, ठंडी लेकिन घुली हुई। मुझे काम चाहिए। अनन्या की आवाज धीमी थी पर कांप रही थी। काम? अब कौन सा काम चाहिए तुझे? तू तो बड़ी शरीफ बनी फिरती थी। सीधा बोल रही हूँ, ऐसा काम जिसमें रात की शिफ्ट हो और पैसा जल्दी मिले। मुझे अब किसी पर डिपेंड नहीं रहना। लड़का चुप रहा, फिर धीमे से बोला, ठीक है, एक काम है, आज रात मिल स्टेशन के पास वाली लेन पर 11 बजे, मैं गाड़ी में मिलूंगा। अनन्या ने हिचकिचाते हुए ठीक है कहा और कॉल काट दी। रात 11:08। स्टेशन की वो पतली सड़क पीली रोशनी में डूबी थी, गाड़ियों की आवाजाही थम चुकी थी। अनन्या ने जैसे ही उस ब्लैक SUV को देखा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। गाड़ी की खिड़की नीचे सरकी। बैठ, लड़के ने कहा। अनन्या चुपचाप बैठ गई। गाड़ी चल पड़ी शहर के बाहर की तरफ। काम क्या है? उसने पूछा। पहले देख ले जगह, फिर तू ही डिसाइड कर लेना, करना है या नहीं, मैं जबरदस्ती नहीं करता। अनन्या चुप रही। कुछ देर बाद गाड़ी एक वीरान इलाके में दाखिल हुई। पुराना सा रास्ता, सूखे पत्ते उड़ते हुए। एक बाईं ओर मुड़ी पगडंडी पर गाड़ी रुकी। सामने था एक पुराना बंगला, टूटी दीवारें, लोहे का भारी फाटक और काले शीशों वाली खिड़कियां। ये क्या जगह है? अनन्या की सांसें तेज हो गईं। सुल्तान वैराना, यहाँ कुछ काम होता है, फिर उसकी तरफ झुककर बोला, और यहाँ नकद मिलता है, समझी? अनन्या गाड़ी से उतरी। दरवाजा खोलते ही पुरानी दीवारों से धूल का गुबार उठा। अंदर सिर्फ अंधेरा था। एक भारी सी सीढ़ी नीचे उतर रही थी और वहां से किसी का रोखाता महसूस हो रहा था। चल अंदर चल, लड़का बोला। अनन्या कुछ कदम चली, फिर दरवाजे के फ्रेम पर ही ठिठक गई। उसका पैर अंदर रखते हुए एक अजीब सी सिहरन हुई। वो जानती थी ये जगह उसके लिए सिर्फ जॉब का नाम नहीं थी, यहाँ कुछ छुपा था, कुछ ऐसा जो कभी भी उसे निगल सकता था। मॉल का बेसमेंट स्टोर सुनसान था, रात की शिफ्ट थी और सेल्स खत्म हो चुकी थी। रैना अकेली कपड़े फोल्ड कर रही थी। स्लिपर्स की आवाज़ से ध्यान टूटा, वो मुड़ी, सामने उसका पुराना मैनेजर। तो ये करियर की उड़ान थी? वो हंसा। रैना ने कोई जवाब नहीं दिया। एक वक्त था जब तुम मीटिंग में सबकी नज़रों में रहती थी, और आज एक शेल्फ से दूसरी शेल्फ तक बस कपड़े सही कर रही हो। वो फिर भी चुप रही। तुम्हें लगा HR में मेरी सिफारिश रोक कर जीत जाओगी? देखो खुद कहाँ पहुँच गई हो, अब बस एक सेल्स गर्ल रह गई हो, वो भी बिना कोई परमानेंसी के। रैना की आंखों में कुछ तड़पा पर होंठ बंद रहे। वो सिर्फ अपने पापा की मेडिकल रिपोर्ट देख रही थी जो पर्स में रखी थी। मैंने तुम्हें समझाया था रैना, मैनेजर आगे बढ़ा, मुझसे उलझना तुम्हारे लिए भारी पड़ेगा, और देख लो पड़ रहा है ना। इस बार रैना बोली, मुझे आपसे बहस नहीं करनी, रास्ता दीजिए, मुझे काम करना है। साहिल कुछ देर तक उसकी आंखों में घूरता रहा, फिर ठहाका मारकर चला गया। रैना वहीं खड़ी रही, घुटनों में हल्का डर था, पीठ सीधी नहीं हो रही थी पर आंखों में आंसू नहीं थे। उसने खुद से कहा, पापा की एक सांस के लिए मैं ये सब सह लूंगी, मगर किसी का एहसान नहीं लूंगी। रात अब गहराने लगी थी। एक तरफ अनन्या उस पुराने घर के दरवाजे पर खड़ी थी, सांसें भारी, दिल डरा हुआ, पर अब पीछे लौटना भी तो मुमकिन नहीं था। दूसरी तरफ रैना मॉल के स्टाफ रूम में जले हुए पैरों पर पट्टी बांध रही थी। वो दोनों दो अलग जगहों पर अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रही थी। अनन्या जानती थी अंदर जाने का मतलब हो सकता है फिर से किसी और की शर्तों पर जीना, और रैना जानती थी मुंह बंद रखकर अपमान पीना शायद अपमान नहीं सब्र था। रात के 12:15 बजे अनन्या अभी भी दरवाजे पर खड़ी थी। उसने गहरी सांस ली और कदम वापस खींच लिया। नहीं, नहीं चाहिए ऐसा काम। उसी पल रैना अपने पापा की दवाइयों की लिस्ट चेक कर रही थी। उसकी आंखों में ठहराव था। ये वो पल थे जब दोनों ने चुपचाप खुद से एक वादा किया था।